کرنے والے نہیں ہیں. شروع کرتے ہیں اپن لوگ, سمے ہو گیا ہے. نہیں لیٹ نہیں ہوں میں, یہی جھلکا بھگوان کے گھر میں. شروع کرتے ہیں. कर्णानुयोग के माध्यम से वीतरागता की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि करना है. वीतरागता की प्राप्ति, वीतरागता की उपलब्धि तो सच में अपने आत्मानुभव से ही होती है. त्रिकालीन रूप गायक भगवान आत्मा को जाने बिना, उसके अवलंबन के बिना तो वीतरागता होती नहीं है. और ऐसा प्रयोजन द्रव्यानुयोग के माध्यम से ही डायरेक्ट सिद्ध होता है. तो बाकी के तीन अनुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग, ये उस दिशा में ले जाने का काम करते हैं. कर्णानुयोग के माध्यम से चिंतन करते हुए हमारा उपयोग वहां तक जाए, उस वीतरागता की तरफ बढ़े. कर्णानुयोग के विषयों को पढ़कर के भी हमारा उपयोग उनसे कैसे हटे, कैसे विरक्ति हो, इसके बारे में हम बात कर रहे थे. कर्णानुयोग के बहुत सारे प्रकरणों को हमने टच किया है. इसी संदर्भ में कर्मों की 10 अवस्थाएं, कर्णानुयोग का बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है. कर्म की 10 अवस्थाएं, जानते हैं आप लोग कर्म की 10 अवस्थाओं के नाम? बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। याद भी कर ले लें, उनका थोड़ा थोड़ा सा हम स्वरूप भी देखते हैं उन दसों अवस्थाओं का, और उन बातों को जानने से मेरा भला कैसे होगा ये बात भी हमारे को समझ में आती है। फिर ज्ञानावरणी आदि जो कर्म है, आठ कर्म, उनकी कैसी परिस्थितियां बनती है, उनकी चर्चा भी अपन कल के सेशन में करेंगे। एक प्रवचन और है अपना कल। देखिए कर्मों की जो दस अवस्थाएं हैं उनमें पहला नाम है बंध, दूसरा है सत्ता, बंध सत्ता, फिर है उदय उदीर्ण। बहुत सरल है, चार शब्द फटाफट याद हो जाते हैं, बंध सत्ता उदय उदीर्ण। फिर कहा उत्कर्षण अपकर्षण, कितने हो गए, बंध सत्ता उदय उदीर्ण, याद होने चाहिए सबको, ठीक है, बंध सत्ता उदय उदीर्ण उत्कर्षण अपकर्षण, ठीक है, फिर संक्रमण, फिर उपशम, फिर इसके बाद में निरक्ति और निकाचित, दस हो गए। अब बंध किसे कहें, तो बंध माने तो है बंधना। क्या सुबह अपन ने चार प्रकार के बंध की चर्चा की थी, किसका किसके साथ में बंधन, कि चेतन के साथ में जड़ कर्मों का बंधन, वो है बंध। तो मैं चेतन हूं और मेरे साथ में जो जड़ कर्मों का जुड़ान हुआ वो बंध कहलाता है। यद्यपि ये बंध जीव के परिणामों से होता है तो भी जीव के परिणाम कर्म में कुछ करने में समर्थ नहीं है और कर्म जीव के परिणामों में कुछ करने में समर्थ नहीं है। चार प्रकार का बंध सुबह देखा हमने, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध, ये चार प्रकार का बंध है। इस चार प्रकार के बंध में भी प्रकृति प्रदेश और स्थिति, इन तीनों से इस जीव के सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। रंज मात्र मतलब समझ लीजिए निमित्त निमित्त संबंध भी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, प्रकृति प्रदेश और स्थिति के साथ में इस जीव के सुख दुख का निमित्त निमित्त संबंध भी नहीं है, क्योंकि इन तीन प्रकार के बंधों के काल में इस जीव को सुख दुख होता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। अब रही बात अनुभाग बंध की, तो जो अनुभाग नाम का बंध है उस अनुभाग बंध में भी तकलीफ नहीं है। किसान सुबह तो आप कुछ कह रहे थे अनुभाग के बारे में, अनुभाग बंध में तकलीफ नहीं है, मोटा नहीं सर, अनुभाग बंध में नहीं, जब बंध के बाद में, बंधने के बाद अभी सेकंड नंबर आता है सत्ता, बंध के बाद में सेकंड नंबर आएगा सत्ता का, माने कर्म बंधने के बाद में अस्तित्व में आते हैं अपने प्रदेशों में, माने समझ लीजिए मैंने बंध को अपने पास में आश्रय दिया, मैंने बंध को अपने पास में रखा, मैंने बंध को अपने पास में जगह दे दी, सब तरफ स्वतंत्र रूप से कारमान वर्गणाएं विचरण कर रही थी, इस जीव के परिणामों का निमित्त मिला और परिणामों के निमित्त से वे कर्म वर्गणाएं स्वतंत्र रूप से जो विचरण करती थी वे कर्म वर्गणाएं आत्मा के प्रदेशों के साथ में वही नजदीक में आकर के चिपक गई, आत्मा के साथ नहीं, आत्मा के ऊपर नहीं, क्योंकि आत्मा स्पर्श स्वभावी, आत्मा में स्पर्श ही नहीं हो सकता तो छुएंगे कैसे। देखो भाई ऐसा होता है जैसे गाय के गले में रस्सी बांधनी हो तो गाय के गले से रस्सी नहीं बंधती, रस्सी से रस्सी बंधती है। जब रस्सी से रस्सी बंधती है तो ऐसा कहने में आता है कि गाय बंध गई, कब कहने में आएगा, जब रस्सी से रस्सी बंधेगी कि नहीं नहीं गाय की गर्दन बीच में होनी चाहिए, गाय की गर्दन बीच में नहीं होगी तो रस्सी से रस्सी हम यहाँ बांध दे और आपसे पूछे बोलो गाय बधी या नहीं बधी, तो किससे कौन बंधा? कि वास्तव में जिस तरह से रस्सी से रस्सी बंधती है उसी तरह से पुद्गल बंधता है। तो जो आत्म प्रदेशों के साथ में वहां मौजूद कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई है, उन्हीं पूर्वबद्ध कर्मों के साथ में नवीन कर्म बंधते हैं। और बंधते भी क्या हैं? सच में कर्म तो कोई ऐसे आते आते नहीं है कुछ भी, वहां जो मौजूद है ना जो कर्म वर्गणाएं, वही कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती है और कुछ नहीं है, कहीं से आते नहीं है। हिसाब ये कर्म कहां से आते होंगे बांधने के लिए? ये कौन सी जगह पर है कर्मों का ठिकाना? कहां रहते हैं ये कर्म बांधने के लिए? कहां से आते हैं? ये कहीं से नहीं आते, ये पूरे लोकाकाश में ठपाठप भरे हुए हैं, स्वतंत्र है ये। और जो हमारे यहाँ नजदीक थी वो वहीं की वहीं, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हुई। जहां वे कर्म थे बस वहां के वहीं बदल गए। किस रूप में बदल गए? ये कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप से बदल गई, इसका नाम है बंध। और जो बंध हुआ अब वो बंध बंधा रहे, वे जुड़े रहे एक निश्चित काल तक, तो वो जो काल है जितने काल तक वे कर्म आत्मा के साथ में जुड़े रहेंगे बंधे रहेंगे उसको कहते हैं सत्ता। जब तक वे रहेंगे ना उस समय को तो स्थिति कहते हैं, लेकिन उसमें जो कर्मों की पोजीशन होती है उसे सत्ता कहते हैं। सत्ता समझ में आई? सत्ता माने सत्य, सत्ता माने अस्तित्व, सत्ता माने उनका कर्म पना, उन कर्मों का कर्म पना, ये कहलाती है सत्ता। बंध और सत्ता दो चीजें हो गई। बंध हमारे को तकलीफ नहीं देता, सत्ता भी हमारे को तकलीफ नहीं देती, क्योंकि कर्म आए थे और वे कर्म आकर के बंधे रहे, बंधे रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोगों को छिपकली से डर लगता है, चूहे से डर लगता है किसी को, अब घर में कॉकरोच से डर लगता है। तो डर कब लगता है बताओ? उनकी सत्ता से डर लगता है कि उनके दिखने से डर लगता है? सत्ता से डर नहीं है, घर में चिपकली रहे, अरे बगल में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कपड़ों के ऊपर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो आप। और किसी पेड़ के नीचे आप बैठे हो और बार बार ऊपर से पत्ते गिर रहे हो और आपके सर पे पत्ते गिर रहे हैं, आप बैठे मजे से और पत्ते की जगह कोई चिपकली गिर जाए सर पर, तो गिरने तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पता नहीं है। तो बंद और पत्ता की ऐसी स्थिति है। अब तीसरे नंबर पर क्या आता है? उदय। ये उदय कैसा आएगा? कि उदय वैसा होगा जैसा अनुभाग बंद हुआ था। जो बंद के चार प्रकार थे ना, उसमें चौथा प्रकार था अनुभाग बंद। अनुभाग बंद का कारण क्या था, अनुभाग बंद हुआ किस वजह से था, इसमें परिणामों के साथ में निमित्त रहमतिक संबंध है, बिल्कुल स्वाधीन नहीं है। देखो हम कर्णानुयोग की अपेक्षा से बात करें तो हम ऐसी बात कह सकते हैं कि आपको झटका लगे, हम ये कह सकते हैं कि आत्मा मूर्तिक है। हाँ कहूंगे साहब ये ऐसी उठपटांग बातें कम से कम यहाँ इस गद्दी से तो नहीं चलेगी। आत्मा मूर्तिक है, हम आत्मा को मूर्तिक भी कह सकते हैं, हम आत्मा को कर्ता भी कहेंगे। अकर्ता तो आपने बहुत सुना है यहाँ देवलाली में, लेकिन कर्ता कहने वाला भी कोई आया था। आत्मा कर्ता भी है। और मैं ऐसी 200 गाथाएं आपको दिखा सकता हूँ जिन गाथाओं में वितराई संतों ने आत्मा को कर्ता लिखा है। किसका कर्ता है? लेकिन कर्म का कर्ता नहीं है क्या? ये आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, ये आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है, ये आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तो फिर किसका कर्ता है? अपने विकारी भावों का कर्ता है। अब देखो कैसी स्वाधीनता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जानते हैं आप कैसे कहते हैं? दो वस्तुएं भिन्न भिन्न, और दोनों ही वस्तुओं का परिणमन जब अपनी अपनी योग्यता से स्वतंत्र होता हो, क्या कह रहा हूं, दो अलग अलग वस्तुएं और दोनों ही वस्तुओं का परिणमन जब अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, स्वतंत्रता से हो रहा है और दोनों का एक ही काल है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने संबंध नहीं है, संबंध कोई नहीं है, वो संबंध कहने में आ रहा है। अब ये कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इधर तो जीव के भाव हुए, वो जीव के भाव हुए अपनी योग्यता से, और जो कारमाण वर्गणाएं थी वे कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई अपनी योग्यता से, और दोनों के स्वतंत्र परिणमन करने का एक ही काल, जिस काल में इस जीव के ऐसे परिणाम हुए उस काल में ऐसा बन, जिस काल में ऐसा कषाय का भाव उस काल में ऐसा, बस वो सिमिलरिटी बतलाना है। नहीं समझे आप? जैसे समझ लीजिए आप, ये जो कर्म है, जो कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, ये कर्मों की 10 अवस्थाएं तो जीव के परिणामों को दिखाने वाली हैं कि इसने कैसे परिणाम किए थे, उसका प्रतिबिंब है वो। जैसे अभी फोटो खींची थी ना इसके पहले सेशन के बाद में, तो उस फोटो में देखो तो किसी की आंख बंद आती है, किसी की खुली हुई है, किसी का मुंह खुला हुआ है, कोई इधर देख रहा है, सबकी अलग अलग तरह की फोटो आ रही है। तो ये अलग अलग तरह की फोटो क्यों आई है ये सबकी? ये मेरी आंखें बंद कैसे ले ली आपने किरण भाई? देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये किस बात का सूचक है कि जिस समय क्लिक किया उस समय आपकी पोजीशन कैसी थी उसको दिखा रहा है, ठीक है ना? तो जिस समय कर्म बंधन का क्लिक हुआ उस समय आपके परिणाम कैसे थे ये दिखाता है अनुभाग। कषायों से स्थिति अनुभाग पड़ता है और योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। यानी हम तो सब जानते योगों की चंचलता से, आत्म प्रदेशों की चंचलता से, परिस्पंदन से, मन वचन काय व्यवहार से, आत्म प्रदेशों की चंचलता अंदर में और उसमें भी जो शक्ति है पुद्गलों को ग्रहण करने की, जिसका नाम वास्तव में योग है, उससे प्रकृति और प्रदेश बंद, और जो परिणामों में उतार चढ़ाव था, जो परिणामों में तेजी थी, जो परिणामों में तीव्रता थी, कषाय का जो परिणाम था, अब उस कषाय के परिणाम को कैसे नापे? तो कर्म से देखो आप, कर्म से तुरंत पता लगेगा कि तुम्हारे परिणाम कैसे थे, वो रिफ्लेक्शन है जो कर्म में दिखता है। तो तीसरे तरह का कौन सा हुआ? करण, बंध, सत्ता और उदय। ये उदय आया था अनुभव से। अब तकलीफ कितनी है इस उदय में? बहुत लिखा है शास्त्रों में, प्रथमानुयुग के शास्त्र तो भरे दिखाई देते हैं, भजनों में बहुत बातें लिखती है, फल क्या खन की बार भरे द्रग, जब फल भोगने का अवसर आता है तो मरी है मूरख रोए, मरेगा मूरख रोएगा, तकलीफ पाएगा जब फल भोगने का प्रसंग आएगा। तो ये उदय का प्रसंग ये बतलाता है। जब हम उदय की गहराई में जाकर के देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कि अरे इनके जीवन में उदय बहुत दिखाई दे रहा था फिर भी दुखी नहीं थे, इनके जीवन में कर्म का बहुत उदय था फिर भी दुखी नहीं थे। देखो भावलिंगी संतों को वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा, कर्णानुयोग के सिद्धांत के लिए प्रथमानुयोग एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा। देखो उन मुनिराजों को, देखो उनका जीवन वो कैसा दिखाई देता है, कर्म का उदय तो बहुत आ रहा है लेकिन तकलीफ नहीं हो रही है, उदय उदय में चल रहा है और वो अपने स्वभाव में रहते हैं। पाप कर्म का उदय आवे तो ज्ञानी जीव सीजते नहीं है, पुण्य का उदय आए तो उस पर रीझते नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो सदा काल अपने ज्ञान में भीजते हैं। पुण्य के उदय में आकर्षित होते हैं अपन, रीझते हैं, पुण्य का उदय आता है तो हमारा चेहरा खिल जाता है, मजा आता है पुण्य के उदय में, कितना अच्छा लगता है ना अपने को पुण्य का उदय। उदय की बात करता हूँ सिर्फ मैं, अभी पुण्य और पाप कर्म के उदय की बात करता हूँ। हमें पुण्य का उदय पसंद आता है, हमें पाप का उदय पसंद नहीं आता है, सबकी यही स्थिति है हमारी। और जब आप पुण्य के उदय को पसंद करते हो तो पाप कर्म का बंधन अपने आप साथ में आ जाता है, दोनों जुड़वा भाई हैं। अब ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप पुण्य को चाहोगे और पाप साथ साथ में बनेगा, तो पुण्य की चाहना बंद करो। हमें क्या क्या लगता है, हमें हमेशा अच्छे अच्छे कर्म किए उदय। लोग कहते हैं कि साहब पाप तो बहुत बुरा है, पाप तो हमें पसंद नहीं है, पुण्य तो सबको पसंद आता है। भाई साहब पुण्य के उदय से सारे काम होते हैं, बताएं आपको, पाप के उदय में कोई काम नहीं होता। पाप का उदय हो तो यहाँ नहीं आ पाओ, पाप का उदय हो तो जिनवाणी नहीं सुन पाओ, पाप का उदय हो तो शरीर साथ नहीं दे रहे, पाप का उदय हो तो पत्नी साथ नहीं दे रहे, पाप का उदय हो तो बच्चे सामने जवाब दे रहे, पाप का उदय हो तो लोक में अपयश हो, निंदा हो, अपमान हो। बोलो कोई गलती नहीं हमारी, और फिर भी अपयश की थी कर्म का, ऐसे पाप कर्म का उदय आवे घर से निकाल दिया जाए। बोलो हनुमान जी की माँ अंजना कैसी परिस्थिति बनी जीवन में, कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं किया वर्तमान में, क्या गलती अभी नहीं की कुछ भी, और लांछन लगा दिया गया उसके ऊपर और घर से निकाल दिया। तो गर्भ में कौन था, सद्भो मोक्ष गामी जीव, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला। 18वें नंबर के कामदेव, कामदेव जैसा महापुरुष जिनके गर्भ में हो और उनकी माँ को घर से निकाल दिया जाए, अरे इधर से तो निकाला ससुराल से, पियर गई तो माँ बाप ने नहीं रखा, बोलो वहां से बाहर निकाल दिया और घर घर की ठोकरें खाती रही, इधर उधर भटकती रही। कैसे पाप कर्म का उदय आता है, कैसे अपयश कीर्ति कर्म का उदय आता है, ये पाप कर्म के उदय में ऐसी दशा होती है। बोलो कौन कौन जाता है पाप कर्म के उदय को, पाप कर्म का उदय होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, पाप कर्म का उदय होगा तो दुकान नहीं चलेगी, और पुण्य का उदय होगा तो सब काम आपके हिसाब से होंगे। पुण्य के उदय में आपकी जवान से जो निकलेगा वो काम हो जाएगा। पुण्य का उदय होता है तो घर में सब कहना मानते हैं, पुण्य का उदय होता है तो समझ लो आप दुश्मन भी आपके चरणों में आकर के झुकते हैं, और पाप कर्म का उदय होता है तो आपका नौकर भी आपको सामने जवाब देता है। बोलो ये कैसी स्थिति है, तो अच्छा लगता है ना पुण्य का उदय, सब हमारे हिसाब से चले, दुनिया हमारे हिसाब से चले, बिजनेस हमारा खूब बढ़े, तो पुण्य का उदय हमारे को अच्छा लगता है। बोलो अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, जब मैं बतला रहा हूँ तो सबको अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे खिल रहे हैं, पुण्य के उदय में चेहरे खिलते ही हैं, पाप का उदय आता है तो चेहरे मुड़ जाते हैं। तो साहब पुण्य का उदय तो हमें बहुत अच्छा लगता है, कि क्यों अच्छा लग रहा है, चलो मैंने इतनी सारी बातें बतलाई, इनमें से कौन सी बात अच्छी लग रही है किरण भाई, पुण्य के उदय की कौन सा अट्रैक्शन ऐसा अच्छा लग रहा है आपको, शरीर सुंदर हो ऐसा पुण्य का उदय हो तो मजा आ जाए। पैसा यदि हमारे पास में बहुत हो जाए, बिजनेस बहुत बढ़े हमारा, तो हमारे को मजा आ जाए पुण्य के उदय में। लेकिन भैया ध्यान रखना, ये पुण्य का उदय उन लोगों के ही थोड़ा बहुत काम में आता हुआ दिखाई देता है जिनको संसार में रहना होता है। ध्यान आनंददायक, हिंसानंदी, व्रजानंदी, परिग्रहानंदी, चौर्यानंदी, आनंद मानता है, जोड़ जोड़ करके आनंद मानता है। जिन्हें संसार में रहना हो उनको पुण्य का उदय चाहिए, उन्हें पुण्य की चाह चाहिए। मैं कहता हूं आपको संसार में रहना है या नहीं रहना है पहले नक्की करो। संसार में रहना हो तो पुण्य की तरफ देखना। अरे हमें संसार में रहना क्या है, जिन जीवों को संसार में रहना नहीं हो पुण्य का करेंगे क्या, बताओ आपको तीर्थंकरों जैसा पुण्य चाहिए या वीतरागता सर्वज्ञता चाहिए, तीर्थंकरों जैसा पुण्य का उदय चाहिए या तीर्थंकरों जैसा आनंद चाहिए। आनंद पुण्य के उदय से नहीं मिलता, आनंद पुण्य का गुलाम नहीं है। बोलो आप, मेरा दुख पाप कर्म के अधीन नहीं है, मेरा सुख पुण्य कर्म के अधीन नहीं है। अरे पुण्य का उदय बहुत तीव्र हो तो भी सुख नहीं, और पाप का उदय बहुत तीव्र हो तो भी दुख नहीं, ये कैसी उदय की स्वाधीनता है। उदय तो कोई कसर नहीं छोड़ता दुखी करने में, पाप कर्म का उदय, उदय क्या कर रहा है, जब पाप कर्म का उदय आता है तो दुखी करना चाहता है इस जीव को, ये दुखी हो, ये दुखी हो, ये दुखी हो पाप कर्म के उदय में। लेकिन ज्ञानी क्या करते हैं, अपने स्वभाव में मस्त रहते हैं, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं मस्ती से, और आने दो कर्मों को, आने दो पाप कर्म का उदय, तो मस्ती से रहता है अपनी अपनी की मस्ती में, क्या फर्क पड़ता है। गुरुदेव के जीवन में पुण्य पाप कर्म के उदय की दोनों तरह की परिस्थितियां चरम सीमा पर थी। पुण्य का उदय इतना तीव्र जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, माने पूरे मुमुक्ष समाज में कोई व्यक्ति एड़ी से छोटी सकता जोर लगा ले, ऐसा पुण्य का उदय हो ही नहीं सकता किसी का। दिखता ही नहीं ऐसा तीव्र पुण्य का उदय गुरुदेव का और पाप कर्म का उदय भी कम नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पाप कर्म का उदय प्रभावित करने वाला नहीं था, विचलित नहीं करता था, और पुण्य का उदय आकर्षित नहीं करता था, दोनों धूल दिखाई देता था उनको। पाप का उदय भी धूल है और पुण्य का उदय भी धूल है, पैसा तो माटी दिखता है, क्या दम है उसमें। किसी भी कर्म के उदय की बात कर लो, हम कल अलग अलग कर्मों के उदय के संदर्भ में चर्चा करेंगे, तो उदय सामान्य की बात करता हूं मैं। उदय से अप्रभावित रहना ज्ञानियों का काम है, ये ज्ञानियों का काम है। इसका मतलब उदय किस में आएगा ये तो देखो, उदय कर्म में आया कि उदय आत्मा में आया ये नक्की करो। अब उदय आता है कर्म में और रोता है आत्मा, ये तो भ्रम से ही रो रहा है, गलत प्रेमी में रो रहा है ना। उदय उसमें आ रहा है और रो रहा हूं मैं, गड़बड़ी हो रही है सामने और तकलीफ पा रहा है ये, तो क्यों ये खाम खामे बिना ही मतलब, तकलीफ का कोई काम नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ और सामने से कोई व्यक्ति को ऐसे उंगली दिखाए, ऐसे अंगूठा दिखाए, रोता हूँ, चढ़ाता है। अरे तुझे क्या हुआ ये बता, आंख बंद रखा अपनी, मत देख उसकी तरफ, वो क्या कर रहा है। परद्रव्य तेरे में क्या करने में समर्थ है, कुछ भी नहीं करता है और तू परद्रव्य की तरफ देख देख करके दुखी होता है। जिसे तू सुख मानता है वो भी सुख नहीं है और जिसे तू दुख समझ रहा है वो भी दुख नहीं है। दुख तेरी मान्यता का है, कर्म दुखी नहीं करते, तेरी मान्यता से तू दुखी है, तेरे अभिप्राय से तू दुखी है। कर्म यदि दुखी करने में समर्थ हो तो आज तक कोई ज्ञानी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता था। दुनिया में अनंत ज्ञानी जीव है, अनंत अनंत ज्ञानी जीव हो चुके हैं, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा है। कर्म यदि रोकने में समर्थ होते, कर्म यदि बांधने में समर्थ होते, कर्म यदि तुझे पकड़े रहने के सामर्थ्य वाले होते और कर्मों की यदि थोड़ी बहुत भी चलती है चेतन के आगे तो इसको मुक्त नहीं होने देते। नहीं चलती है कर्मों की, लेकिन बिल्कुल नहीं चलती है। कोशिश तो बहुत करते हैं कर्म, उदय आया और विचलित। देखो मैं कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, प्रथमानंद युग का एक प्रसंग मुझे याद आता है उसका, शुभम चक्रवर्ती का। शुभम चक्रवर्ती के ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया था पता है आपको, आ गया था कि नहीं आया था? हिमजनी था, नहीं आया था, सच में कोई संकट नहीं था उसके ऊपर। बोलो हृदय पर हाथ रख करके सोचना, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, सबको पता है। रसोई के ऊपर थाली फेंक दी थी, वो बन गया था, जंतर बन गया था, लौट करके आया, फल लेकर के आया, लवण समुद्र में ले गया, पता है इतना सबको। लवण समुद्र में ले गया वो व्यंतर, शुभम चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती जैसा सम्राट, छह खंड की विभूति का स्वामी, 32,000 राजा जिसके अधीन है, हजारों देव जिसके वासली में खड़े रहते हैं, इतनी ताकत चक्रवर्ती सम्राट की आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी एक एक प्रसंग को ऐसे लंबा करो, उसकी उंगली का, उसकी छठी उंगली में कितनी ताकत है, कुछ नहीं करना अपने को ज्यादा विस्तार। वो उसको लवण समुद्र में ले गया व्यंतर देव। अब वहां जाकर उपद्रव करना चालू किया, सबको पता है आंधी तूफान चालू हो गए, नाव डगमग डोलने लगी, भयंकर लहरें आने लगी, ऊपर से बरसने लगी, आग बरसने लगी। ये क्या कर रहा था? नमोकार मंत्र बोल रहा था, नमोकार मंत्र बोल रहा था शुभम चक्रवर्ती। ये नमोकार मंत्र बोल रहा है और वो उपद्रव कर रहा है। नमोकार मंत्र बोलने से, अंदर में नमोकार मंत्र का स्मरण होने से, रंज मात्र भी आपत्ति विपत्ति संकट इसके ऊपर नहीं होता है, बिल्कुल तकलीफ में नहीं। लेकिन मान क्या रहा है? मान ये रहा है कि वो ये तो बहुत भारी संकट है। अब वो संकट मान रहा है इसलिए दुखी है, देव भी समझ गया कि ये सुरक्षित है, ये कोई ना कोई मंत्र बोल रहा है अंदर में, ये सुरक्षित है। वो देव क्या कहता है? तो जो मंत्र बोल रहा है, एक काम कर, तो पानी में लिख और पैर पे मिटाम दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब देखो आप विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी हालत है, हमारी भी हालत ऐसी है। कर्म उपद्रव मचा रहा है, उदय आ रहा है कर्म का, विपत्तियां दिख रही है, संकट दिखाई दे रहे हैं, पीड़ा दिखाई दे रही है, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तकलीफ हो रही है, न मालूम क्या क्या हो रहा है। और बाहर में इतनी प्रतिकूलता है, लोग गालियां दे रहे हैं, घर पे निकाल दिया है, हड्डी टूट गई है, हाथ पांव टूट गए, अस्पताल में भर्ती है, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, जवान बेटा मर गया, इतनी आपत्तियां चारों तरफ से संकट दिखाई दे रहे हैं। अब बोलो आप ये दुखी हो रहा है? अब मैं कह रहा हूं कि इसमें तेरे को दुख किस बात का है बता, तो ये दुख किस बात का है? ये नहीं था पत्नी का स्वर्गवास हो गया, जो उसका स्वर्गवास हो गया वो देवों के साथ में घूम रही है ऊपर। यदि स्वर्गवास हुआ हो तो, यदि नरकवास हुआ हो तो देव कहां मिलेंगे? क्या त्रियंश में कहां ऐसा अवसर है? सोचो आप किस किस बात की तकलीफ है? आपका चिंतन ही तो बदलना है, दुख का कारण तो आपकी सोच है ना, और कुछ नहीं है। हम अपनी सोच से ही तो दुखी हैं, हम अपने चिंतन को बदल करके तो दुखी हो सकते हैं। तो ये जितना भी चिंतन है जिनवाणी के माध्यम से जो बतलाया जाता है, ये सब हमारी सोच बदल देता है, हमारा चिंतन बदल देता है, किसी भी घटना को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। जैसे ही हमारा दृष्टिकोण बदलता है काम हो जाता है कि नहीं नहीं साहब आपकी बात तो सही है, देखो कि ये जो उदय है ना, ये उदय संसार में रहने में काम आता है, मोक्ष में तो काम आता नहीं है। लेकिन पंडित जी क्या करें, अभी तो हमें संसार में रहना ही है थोड़े समय तो। जब तक संसार में है तब तक तो पुण्य ही काम आएगा ना। अभी पाप का उदय हमारे को तकलीफ देता है, पुण्य का उदय हो तो वो हमारे कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा काम? पुण्य का उदय अनुकूलताएं प्रदान कर सकता है, पुण्य के उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ये कर्म का उदय भेद विज्ञान कराने में समर्थ नहीं है, कर्म के उदय से भेद विज्ञान नहीं होता। इस कर्म के उदय से बाहर में अनुकूलताएं मिलती है, इस कर्म के उदय से अतिंद्रिय आनंद नहीं मिलता। ऐसी कौन सी पुण्य प्रकृति है जिस पुण्य प्रकृति के उदय में इस जीव को अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति हो? एक भी नहीं है। मैंने पुण्य के उदय से अतिंद्रिय आनंद मिलता ही नहीं, और मुझे चाहिए अतिंद्रिय आनंद। अब मैं क्या करूं इस पुण्य का? पुण्य का ढेर लगा लो, किसी काम का नहीं है, किसी काम नहीं आएगा ये पुण्य। सप्तम नरक का नारकी घोर प्रतिकूलता, ऐसा पाप कर्म का उदय जैसा पाप कर्म के उदय की हम कल्पना नहीं कर सकते, स्वप्न में नहीं आ सकता ऐसी कल्पना है। सप्तम नरक के नारकी की ऐसी दशा है, अपने स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ पूर्वक अतिंद्रिय आनंद का स्वाद ले सकता है उस पाप कर्म के उदय में भी। दुनिया में पाप कर्म का उदय आता है तो कोई काम नहीं होता आपके मन माफिक, एक काम है जो हो सकता है स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ। पाप कर्म के उदय में कोई काम नहीं होगा, पाप कर्म के उदय में सोना हाथ में लेकर के चलोगे मिट्टी हो जाएगा। पाप कर्म के उदय में जिसको आपने उधार दिया वही लेकर के भाग जाएगा। पाप कर्म के उदय में करोड़ों रुपया लगा करके आपने बिजनेस शुरू किया और सब खत्म हो गया। पाप कर्म के उदय में जो काम करो सब काम बिगड़ते हैं। लेकिन ऐसे तीव्र पाप कर्म के उदय में भी यहाँ रोटियों की व्यवस्था नहीं हो, यहाँ भोजन का ठिकाना नहीं हो, यहाँ शारीरिक प्रतिकूलता हो, यहाँ सब तरह से विरोध दिखाई देता हो, ऐसे समय में भी शांत चित्त होकर के अपने स्वरूप का अनुभव करो, आनंद का उपभोग करो। उदय से अप्रभावित रहने की कला, और कहूं उदय भी से भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। उदय के आगे वाला स्टेप है उदीर्णा, बंद सत्ता उदय से चौथे नंबर पर था उदीर्णा। ये उदीर्णा क्या चीज है? उदीर्णा माने कर्म समूह रूप से उदय में आना, एक प्रकार से उदय का ही एक प्रबल रूप है। समूह रूप से वो कर्म पुंज जब एक साथ उदय में आए तो उदीर्णा कहलाता है, तीव्र प्रभाव दिखाई देता है। तो काम उदय में नहीं दिखता, उदीर्णा में काम दिखता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि निद्रा नामक दर्शनावरणी कर्म का उदय सब जीवों के दिखाई दे रहा है, लेकिन उदीर्णा किसी किसी की दिखती है, पीछे बैठे हुए किसी किसी की, मुझे अभी तो नहीं दिख रही है। उदीर्णा में क्या होता है? उदीर्णा में काम होता है, वो जो जबकि आती है वो निद्रा दर्शनावरणी कर्म के उदय का काम नहीं है, वो उदीर्णा का काम है। तो ये है उदीर्णा, और उदीर्णा में भी कर्म आकर के खिल गए, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पाप कर्म का उदय भी आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका उदय आ गया उसने मुझे तकलीफ नहीं दी, वो आ गया, वो चला गया, खत्म हो गया, काहे को तकलीफ भोगता है? समझ में आ रही है बात? पाप कर्म का उदय आया, सर पे डंडा पड़ गया, चोट पड़ गई, चोट लग गई एकदम। तो जिस पाप कर्म के उदय में चोट लगी थी, अब वो पाप कर्म का उदय चला गया, अब वो पाप कर्म का उदय टिका हुआ नहीं है। ये उदीरणा का काम है। और इसके बाद में आगे चलो आप, बंद सत्ता उदय उदीरणा उत्कर्षण अपकर्षण किसमें होता है? होता है कर्म में, निमित्त बनता है जीव का परिणाम। अब बोलो ये बहुत बड़ी पावर है अपने पास में, जीव के पास में इतनी बड़ी पावर है कि आ जाओ कर्म की सेना कितनी भी आ जाओ, मैं यदि चाहूं अपने परिणामों को संभाल कर बदल कर तो कर्मों का नाश कर सकता हूं। कर्मों का नाश यदि मैं वर्तमान में न कर पाऊं तो कोई बात नहीं, अपने उज्जवल परिणामों से मैं पुण्य कर्म का उत्कर्षण कर सकता हूं, मैं अपने वर्तमान के उज्जवल परिणामों से बने हुए पाप कर्म का आकर्षण कर सकता हूं, मैं बने हुए पाप कर्म को पुण्य कर्म में बदल सकता हूं। इतनी ताकत है मेरे परिणामों में, कर्म क्या कर लेंगे मेरा बताओ? जानते हैं उत्कर्षण किसका नाम है? उत्कर्षण माने बढ़ना, उत्कर्षण माने वृद्धि होना, तेजी होना, ज्यादा हो जाना, पावर ज्यादा होना, उसका नाम है उत्कर्षण। स्थिति का बढ़ना, अनुभव का बढ़ना, वो उत्कर्षण कहलाता है। और स्थिति का घटना और अनुभव का घटना, ये अपकर्षण कहलाता है। तो उत्कर्षण भी कर सके और अपकर्षण भी कर सके, कितने कर सके? बंधे हुए कर्मों में, पड़े हुए कर्मों में, ये वर्तमान की ताकत। कर्म एक समय में उदय में आएगा। मैं कहता हूं कई बार, हमारे वर्तमान परिणामों में इतनी ताकत है जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को प्रभावित करता है। ये हमारे वर्तमान परिणामों की ताकत है। ये बात मैं द्रव्यानुयोग से नहीं कह रहा हूं, ये बात करणानुयोग के आधार से कह रहा हूं। करणानुयोग ही ये बात बतलाता है हमारे को कि कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होते रहते हैं, ये वही तो बतला रहा है। करणानुयोग की तो चर्चा है कि कर्मों में उत्कर्षण भी हो जाता है। होता कहते हैं परिणाम जीव के निमित्त बनते हैं, हमारे परिणामों का निमित्त बना और बंधे हुए कर्मों में उत्कर्षण हो गया। कब के बंधे हुए? 100 साल पहले बने। कब के बंधे हुए? भूतकाल में बंधे हुए। कब के बंधे हुए? बचपन में किए हुए। कब के किए हुए? कि युवावस्था में किए हुए। कौन से पाप कर्म के सबसे ज्यादा? चोरी, झूठ, हिंसा, पाप के जो भी तुमने किए हैं, डरो मत इन कर्मों से। साहब कर्मों से नहीं डरे हम? कैसी बात कर रहे हो आप? कर्मों से तो डरना ही पड़ेगा। कि नहीं नहीं डरने की जरूरत नहीं है, इन कर्मों को बदलने की जरूरत है। बदल जाते अपना जो पुरुषार्थ स्वाध्याय चिंतन मनन के लिए चलता है, उस पुरुषार्थ से कर्म बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। सम्यक पुरुषार्थ से कर्मों में कमी आ जाती है और मिथ्या पुरुषार्थ से, विपरीत पुरुषार्थ से वे कर्म बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्य और पाप कर्म के उदय से थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पाप रूप परिणाम किए, तो पाप रूप परिणाम करने पर पुण्य प्रकृतियों का अनुभव कम होगा और पाप प्रकृतियों का अनुभव बढ़ेगा। ठीक है, पाप रूप परिणाम करने पर। अब पुण्य रूप परिणाम किए, तो पुण्य रूप परिणाम होने पर पुण्य का अनुभव बढ़ेगा और पाप प्रकृतियां जो बनी हुई थी उनका अनुभव कम होगा। ये ऐसी व्यवस्था है। संक्रमण बड़ी जबरदस्त चीज है, संक्रमण तो बहुत जबरदस्त चीज है। होगा कर्म में क्या? कर्मों को पता नहीं है क्या होना है, और पावर है जीव की और संबंध है निमित्त नैमित्तिक। इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं माने तो निश्चयवादी, एमसीजी साहब ने कहा था कल परसों, इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं माने तो निश्चयवादी, और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही कर्ता कर्म यदि मान ले तो व्यवहारवादी। दोनों भूले हैं ब्रह्म में। निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्वीकृति भी होनी चाहिए और निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म न मानने रूप श्रद्धा भी होनी चाहिए। कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इतना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखता है, कर्म के उदय में ये काम होगा ही होगा, ऐसा होता है। आपके ऐसे आयु कर्म का, नरक आयु कर्म का उदय आएगा तो आप यहाँ नहीं टिक सकते, आपकी स्थिति अधोलोक में ही होगी। बोलो कैसी कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कितने घने हैं ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए मैं कहता हूँ यदि इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं मानोगे या इन करणानुयोग के इन विषयों को नहीं मानोगे तो संसारी सिद्ध नहीं होगा। आप कारण नहीं तलाश सकते, इन परिस्थितियों का हेतु नहीं बतला सकते। बस आपके पास में हर प्रश्न का एक ही जवाब रह जाएगा, ऐसी योग्यता थी, ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ, ऐसी योग्यता थी, इसकी ऐसी योग्यता है। फिर हमने पूछा ये ऐसा क्यों होंगे, ये ऐसी योग्यता है कि ये ऐसा क्यों होगा, इसकी ऐसी योग्यता है कि नहीं, और भी तो कुछ बताओ कि नहीं ऐसी योग्यता है, इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है ना, और क्या जवाब दे सकता है उन्होंने। क्योंकि जहां कहीं आपने दूसरी बात कही तो फिर वो बदल करके करना में ऊपर आ जाएगी बात। उदय बापे की बात करता है, उत्कर्षण बढ़ना कह दिया, आकर्षण घटना कह दिया, संक्रमण शब्द का अर्थ होता है बदलना, बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। कौन बदल जाए, कर्म भी बदल जाते हैं, फल देने के पहले बदल जाते हैं, बांधे थे हमने और उदय में आने के पहले कर्म बदल जाए, बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। कैसे बदल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके परिणामों के ऊपर, जैसे परिणाम होंगे वैसे कर्म बदल जाते हैं। संक्रमण के संदर्भ में तीन नियम है, चार कह सकते हो, तीन चार नियम है। क्या नियम है संक्रमण के बारे में? पहला नियम, मूल प्रकृतियां एक दूसरे में नहीं बदलती, ज्ञानावरणी कभी भी दर्शनावरणी में नहीं बदलेगी, दर्शनावरणी कभी भी मोहनी में नहीं बदलेगी, मोहनी कभी भी वेद आयु नाम गोत्रादि में, इनमें आपस में नहीं बदलते, ये संक्रमण नहीं होता, ठीक है। दूसरा नियम, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय में नहीं बदलती, और चारित्र मोहनीय दर्शन मोहनीय में नहीं बदलती। तीन बातें हो गई, दो भी कह सकते हो। और आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता आपस में, ये संक्रमण के संदर्भ में नियम है। माने आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो बंधने के बाद में बदल नहीं सकता, बदलाव तो होता है उसमें भी। मैं तो बहुत दो तीन लोगों ने मेरे से अभी सुबह के व्याख्यान के बाद बोला कि आप आयु कर्म के बारे में समझाओ, आप भी कह रहे थे शायद, है ना, और भी कह रहे थे कोई, तो आयु कर्म के बारे में समझाओ, समझ में नहीं आता हमारे, आयु कैसे बनती है, आयु का क्या स्वरूप है, कुछ नहीं, बहुत सीधी सी बात है, विवाह में बनती है, उत्कर्षण उत्कर्षण हो जाता है, संक्रमण नहीं होता है। एक बार जो आयु कर्म बंध गया उस आयु कर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता माने नरक बांध ली तो त्रियंज नहीं हो सकती, त्रियंज बांध ली तो देव नहीं हो सकती, देव बांध ली तो मनुष्य नहीं हो सकती, ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। बाकी जो संक्रमण नहीं होता लेकिन उत्कर्षण उत्कर्षण वो तो होता ही रहता है। हमारे वर्तमान परिणामों से बंधी हुई आयु में भी आपको मर करके एक इंद्रिय होना था, मान लो आपने ऐसा कर्म बांध लिया, आप ऐसे परिणाम बदल सकते हैं कि सैनी बनी इंद्रिय हो जाए, त्रियंश त्रियंश से त्रियंश, उसमें उत्कर्षण उत्कर्षण हो सकता है, बदल जाएगा। कितने बांधा हमने, बांधा हमारे परिणामों से बांधा, पर एक स्वाधीनता का भान हो कि कौन से कर्म परमाणु बदलेंगे, कितनी मात्रा में बदलेंगे, बदल करके किस रूप हो जाएंगे, किस रूप नहीं होंगे, इस व्यवस्था को देखने वाला कौन है, कि इस व्यवस्था को देखने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर यदि कोई नहीं है तो फिर कहीं कोई गड़बड़ी कि कर्म रिश्वत नहीं लेते, कर्मों में बेईमानी नहीं होती, कर्म आलसी प्रमादी नहीं होते, कर्मों में धोखाधड़ी का काम नहीं होता, ये बहुत ईमानदार है करणानुयोग का प्रकरण, इसीलिए हमने धर्म काटा कहा था। ये करणानुयोग के प्रकरण इतने ईमानदार हैं क्या कि रंज मात्र भी इधर उधर नहीं कर सकते आप, थोड़ा बहुत भी हिसाब है, कितने डिग्री बोलो, सर दर्द एक प्रकार का नहीं है, सब लोगों के सर दर्द हो और सबका सर दर्द अलग अलग प्रकार का हो, सबकी संपत्ति अलग अलग प्रकार की, सबके मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, सबका मनुष्य शरीर और सबके आंख नाक कान और सब एक समान नहीं है, बोलो कौन कर रहा है इस व्यवस्था को, कौन देख रहा है कि मेरे बाल कब सफेद होंगे और कब तक काले रहेंगे। इस निश्चिंतता की चर्चा करूंगा कल मैं आठों कर्मों से, ये कर्म सच में इतना बड़ा काम करते हैं जो निश्चिंत कर देते हैं हमारे, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। तो कल सबके उदय की स्थिति देखेंगे, ज्ञानवर्णी की भी, दर्शनावर्णी की भी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, आठों कर्मों के उदय में कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है और उन परिस्थितियों से जीव कैसे निश्चित हो जाता है। चिंता है हमारे को आठों कर्मों की। तो कहां तक आ गए यदि अपन बढ़ते हुए? संक्रमण, उपशांत, दबे रहना, निदत्ती और निकाजी, तो ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं जिनको देख करके लोग घबराते हैं। निदत्ती निकाचित की जब जब चर्चा चलती है तो ऐसा लगता है लोगों ने हवा बना रखा है निदत्ती निकाचित कर्म प्रकृतियों। अरे भाग, ये प्रकृतियां तो थोड़ी खतरनाक होती है। ये क्या खतरनाक होती है? ये प्रकृतियां इतनी खतरनाक होती है, जैसे निदत्ती की बात करें तो निदत्ती किसे कहते हैं? संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य कर्म प्रकृतियों को निदत्ती कहते हैं। ये ऐसे कर्म परमाणु हैं, संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य, ऐसे कर्म जो बंधे तो थे लेकिन बंधने के बाद में उनका जो है ना वो संक्रमण नहीं हो सकता, उनमें उदीर्णा नहीं आएगी। तो संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य वो कहलाता है निदत्ती। और निकाचित तो और ज्यादा प्रगाढ़ कर्म है, इतना प्रगाढ़ है कि जिस रूप में बांधा था उसी रूप में उदय में आता है। इसके लिए परिभाषा क्या दी है आगमों में कि संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण, इन सब के अयोग्य, इन चारों के अयोग्य कर्म प्रकृतियों को निकाचित कर्म प्रकृति कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि साहब ये निकाचित कर्म प्रकृतियां कौन सी होती है, ये निदत्ती निकाचित कर्म प्रकृतियां कौन सी होती है, कोई कर्म का नाम बतला सकते हो आप? तो हम ये कहते हैं कि कर्मों में नाम नहीं, आठों कर्मों में, क्योंकि जो जिन दस अवस्थाओं की अभी हमने नाम बतलाए आपको, जिन दस अवस्थाओं की हमने चर्चा की है, ये सब ज्ञानवर्णी में भी होते हैं दस अवस्थाएं, ये सब दक्षिणावर्णी में भी होती है, ये सब मोहनी में भी होती है, ये सब अंतरा, ये सब कर्मों में होती है ये दसों अवस्थाएं। इसका मतलब ज्ञानवर्णी कर्म के कुछ विशिष्ट परमाणु स्पेशल वो निदत्ती और निकाचित रूप में है, माने वो फल देंगे ही देंगे, माने उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अब देखो कौन से परमाणु देंगे ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है, जहां योग्यता की बात कहते हैं वहां द्रव्यान योग आ जाता है। नहीं समझ में आई बात? कितनी स्वाधीनता है इसमें कि जिन कर्म परमाणुओं को जिस रूप में फल देना है वो फल देंगी ही देंगी, लेकिन फल कहाँ देंगी, कि चेतन में कि अचेतन में? अच्छा फल मिलता होगा तो क्या होता होगा ये? चलो अपन फल की बात करें, कर्मों का फल मिलता होगा तो क्या होता होगा? फल कैसे मिलता है? कैसे मिलता है कि ये एप्पल और बनाना लीजिए सब, फल फल कैसे मिलता है? मेरे को तो मिला ही नहीं आज तक कभी, दिया ही नहीं मेरे को। ये कर्म फल कैसे देते हैं? आप लोगों को दिया आज तक कभी कर्मों ने कुछ? आपको लगता है संयोग दिए हैं, संयोग मिले हैं। मैं कल करूंगा इनकी भी विस्तार से चर्चा, इनके मिलने का क्या मतलब है। सच में मिलता मिलता कुछ नहीं है, ये कर्म कुछ करते ही नहीं है। एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु में कुछ नहीं कर सके, ऐसी बात जहां हमने पढ़ी है, फिर हम कहेंगे इसने ऐसा कर दिया और उसने ऐसा कर दिया। अरे दुनियादारी में तो करने की कुछ बात ही नहीं है। एक कर्म का परमाणु भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आर वर्गणा के परमाणु कार्बन वर्गणा में नहीं कर सकते, ये कार्बन वर्गणा के परमाणु आर वर्गणा में नहीं कर सकते, इतनी स्वाधीनता का काम है। अनंत पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ में बनते हैं, अनंत में से हर परमाणु का परिणाम स्वतंत्र है, हर परमाणु का परिणाम स्वतंत्र है। एक समय में बांधे हुए कर्मों का फल अनेक समयों में मिलता है और अनेक समयों में बांधे हुए कर्मों का फल एक समय में मिलता है। किसका किसके साथ में कोरिलेशन है, किसका किसके साथ में संबंध बैठेगा, अपेक्षित कर्म के साथ में ज्ञानवर्णी के उदय का क्या होगा, उसके उदय के साथ में उसके उदय का क्या होगा, बड़ी विचित्र प्रकार की परिस्थितियां बनती है। लेकिन ज्ञानी जीव उन सभी प्रकार की परिस्थितियों में निर्देश अपने आप को देखते हैं, और ऐसा अपने आप को देखें और मत रहें, उदय को उदय में आने दो और अपने को अपने में रहने दो, बस ये काम करना है अपने को। तो आठवीं कर्मों के उदय के काल में और आठवीं कर्मों की इस प्रकार की दस प्रकार की अवस्थाओं के काल में मैं इन अवस्थाओं से निरपेक्ष, क्योंकि कर्म मुझ में नहीं और मैं कर्म से भिन्न बिल्कुल न्यारा निराला, ऐसा जो लोग स्वीकार करते हैं उनके कर्मों का अभाव हो जाता है और जो कर्मों की तरफ देखते रहते हैं उनके कर्म का बंधन बना रहता है, कर्मों की तरफ देखना बंद करके ही हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। हम सभी की दृष्टि वहाँ से हटे और अपने स्वभाव की तरफ हम देखें। इसी भावना से मैं बात को विराम। कल 10 की चर्चा करेंगे, नहीं 50 मिनट लिया मैंने, मैं मिनट से चलता हूँ।